हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। वर्तिका ने जिद करके समय को अपने साथ डिनर के लिए मना ही लिया था। समय जानता था वर्तिका आर्यांश की बहन है। आर्यांश के बारे में पता लगाने के लिए ही समय डिनर पर आया था। बातों बातों में वर्तिका ने समय को वाटर पार्क में जाने के लिए इन्वाइट किया। वर्तिका ने बताया कि आर्यांश ने वो पूरा बुक किया है, जिसे सुनकर समय के चेहरे पर कड़वाहट भरे भाव थे। उसके मुंह से यही निकला कि आर्यांश को किसी चीज की कमी नहीं है। वर्तिका भी उससे काफी खुलकर बात कर रही थी। उसने जवाब में कह दिया था कि आर्यांश को आज भी उसके पहले प्यार की कमी खलती है। समय कब से आर्यांश के खिलाफ कुछ ऐसा ढूंढ रहा था जिसे वो दीवा को बता सके और ये कह सके कि वो उसके लिए सही इंसान नहीं है। दीवा के साथ रहते हुए भी आर्यांश अपने पहले प्यार को याद करता था। इसका मतलब वो उस रिश्ते में अपना 100% नहीं दे रहा था। हालांकि आर्यांश की जिंदगी के बारे में इतना बड़ा राज बताने के बाद वर्तिका ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया था। समय ने आंखें छोटी करके वर्तिका की तरफ देखा और पूछा, लेकिन वो तो रिलेशनशिप में है, ओपन रिलेशनशिप कोई मजाक नहीं होती है। अगर तुम्हारा भाई अपने पहले प्यार को नहीं भूला है तो इसका मतलब वो उस लड़की से प्यार नहीं करता जिसके साथ वो रहता है। ऐसा कुछ नहीं है, वो बस उसे मिस करता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो दीवा से प्यार नहीं करता है। मेरा भाई दीवा से बहुत प्यार करता है और उसी के लिए उसने पूरा वाटर पार्क बुक किया है। वर्तिका ने आर्यांश का पक्ष लिया। समय के चेहरे पर कड़वाहट भरे भाव थे। चाहकर भी उसे आर्यांश के बारे में कुछ ऐसा पता नहीं चला था जिसके चलते वो दीवा को आर्यांश से अलग होने के लिए कह सके। वो हर तरीके से परफेक्ट था। समय बिल्कुल शांत था। बातों का रुख अचानक से दूसरी तरफ चला गया था, जिससे माहौल थोड़ा गंभीर हो गया था। माहौल को हल्का करते हुए वर्तिका ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा उसके बारे में बात नहीं करते हैं ना, हम दोनों साथ में आए हैं तो हमारी बात करते हैं। मुझे बताओ, तुम हमारे साथ चल रहे हो ना?
नहीं, मैं नहीं चल सकता हूँ, समय ने तुरंत जवाब दिया। उसे डर था कि दीवा के सामने वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। ऊपर से दीवा वहाँ पर आर्यांश के साथ भी होने वाली थी।
लेकिन क्यों? वर्तिका ने हैरानी से पूछा। तुम जानते हो वो जगह बहुत महंगी है और ऊपर से हमेशा वहाँ बहुत भीड़ भी रहती है। जब हमने पूरी जगह बुक कर रखी है तो तुम क्यों नहीं आ रहे हो?
इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारे भाई को नहीं जानता हूँ, ऐसे में मैं कम्फर्टेबल नहीं रह पाऊंगा, समय ने जवाब दिया।
उसका कहना भी गलत नहीं था। समय और वर्तिका की पहचान भी अभी अभी हुई थी। हालांकि एक दो मुलाकातों और कुछ ही बातों में वर्तिका को समय एक भला इंसान लगा और वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी थी।
तुम सही कह रहे हो, कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम साथ में चलेंगे जब भी तुम्हें टाइम हो, वर्तिका ने उसकी बात पर हामी भरी।
हाँ बिल्कुल, समय ने उसे टालने के लिए कहा। समय ने आगे वर्तिका से उसकी सेलिब्रिटी लाइफ और टाइट शेड्यूल के बारे में बात करनी शुरू कर दी थी। तो वहीं दूसरी तरफ आर्यांश अपना काम खत्म करके हमेशा की तरह दीवा को लेने अस्पताल पहुंचा। कल की तरह आज पूरी दोपहर कियाना आर्यांश के साथ उसके ऑफिस में थी। आर्यांश ने कल कियाना को आने से मना कर दिया था। वो दीवा के साथ रिलेशनशिप में था, ऐसे में वो नहीं चाहता था कि ऑफिस में लोग उनके बारे में गलत सोचें। आर्यांश पार्किंग लॉट में गाड़ी से सटकर खड़ा हुआ था और कियाना के बारे में सोच रहा था। तभी उसे दूर से दीवा आती हुई दिखाई दी। हमेशा की तरह कैजुअल ड्रेस और हैंडबैग लिए, इतना काम करने के बाद भी उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी जो आर्यांश को देखकर आई थी। आर्यांश ने दीवा के लिए गाड़ी का दरवाजा खोला, लेकिन गाड़ी के अंदर बैठने के बजाय दीवा ने आर्यांश को हग कर लिया था। दीवा, आर्यांश ने उसके बालों में अपने चेहरे को छुपाते हुए कहा। दीवा की ये हरकत उसके लिए थोड़ी चौंका देने वाली थी, क्योंकि वो पब्लिक प्लेस पर इस तरह जाकर उसे गले नहीं लगाती थी।
मैंने तुम्हें बहुत मिस किया आर्यांश, दीवा ने धीमी आवाज में कहा।
मैंने भी, आर्यांश ने जवाब दिया और फिर दीवा से अलग होकर उसके होठों को कैप्चर कर लिया था। आर्यांश बिना किसी की परवाह किए हमेशा की तरह दीवा को किस करने में खोया हुआ था, जबकि दीवा जानती थी कि अभी हॉस्पिटल में ज्यादातर स्टाफ की ड्यूटी खत्म होने पर वो इस तरफ ही आते थे। कुछ लोगों के दूर से बात करने की आवाज़ सुनकर दीवा ने जल्दी से आर्यांश को अलग किया और आंखें छोटी करके कहा, आर्यांश हम हॉस्पिटल में हैं। उसके गाल लाल हो रहे थे।
ठीक है, तो फिर घर जाकर किस कर लेते हैं, आर्यांश ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा और दीवा को अंदर बैठने का इशारा किया।
दीवा गाड़ी में जाकर बैठ गई थी। अस्पताल स्टाफ के कुछ लोगों ने आर्यांश और दीवा को साथ में देख लिया था। हालांकि उन्होंने उसे किस करते नहीं देखा था, लेकिन जिस तरह से आर्यांश रोज दीवा को लेने आता था, उनका प्यार देखकर उनमें से कुछ मुस्कुरा दिए तो कुछ जलन से भर उठे थे।
कुछ ही देर में आर्यांश दीवा को लेकर घर पहुंच चुका था। सुमन किचन में लगी हुई थी तो आर्यांश दीवा को लेकर सीधा लिविंग रूम में पहुंचा। वहां आते ही दीवा ने आर्यांश का ब्लेजर उतारा। वो बोली, आज इतने थके हुए क्यों लग रहे हो? कुछ ज्यादा ही काम कर लिया क्या? बस यही समझ लो, आर्यांश ने जवाब दिया और काउच पर जाकर बैठ गया। तब तो तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट देना बनता है, दीवा मुस्कुराकर बोली और आर्यांश के पीछे जाकर उसके कंधों को हल्का दबाने लगी थी। हे, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, तुम खुद भी काम करके आई हो, आर्यांश ने दीवा के चेहरे की तरफ देखकर कहा। हालांकि आर्यांश को किसी का छूना पसंद नहीं था, लेकिन दीवा के मामले में बात अलग थी। दीवा जब खुद से उसके करीब आती थी तो उसे अच्छा लगता था। भले ही वो दीवा को ये सब करने से इनकार कर रहा हो, पर उसे इससे काफी राहत भी महसूस हो रही थी। नहीं, आज मुझे कुछ खास काम नहीं था, तुम रिलैक्स करो, मैं ठीक हूँ, दीवा बोली। दीवा जब आर्यांश के कंधों को हल्का हल्का दबा रही थी, तब उसकी नज़र अचानक उसकी शर्ट पर लगे लिपस्टिक के दाग के ऊपर गई। हमेशा दीवा ही आर्यांश के लिए कपड़े निकालती थी, ज्यादातर उनके कपड़े एक दूसरे से मैच करते थे। दीवा को अच्छे से याद था कि जब उसने सुबह ये शर्ट निकाला था, तब उस पर किसी तरह का कोई दाग नहीं था। ऊपर से दीवा वैसे शेड की लिपस्टिक यूज नहीं करती थी।